जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधार। हरि बोल। मैं क्या बताया आपको, समझ में नहीं आपको? जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमोनतीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय
जय जय गन्नाथ जय जय गन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौर हरि बाल हरि बाल हरि बाल हरि बाल जय जय प्रभुपाद 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 शैल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय तो आज शिवरात्रि है तो शिव जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक ब्रह्म संहिता से है, मेरे बार उच्चारण करने के प्रयास कीजिएगा। क्षीरं यता दधि विकार विशेष योगात् क्षीरं यता दधि विकार विशेष योगात् संज्ञायते नहि तत पृथगस्ति हेतो संज्ञायते नहि तत पृथगस्ति हेतो यं शम्भुधा विदुषा समुपेति कार्या यः शम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। विकार विशेष योगा जगस्ति हेतु शम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यदि विकार विशेष योगा भूतामुक्ति है तो भूतामपि तथा समवेति कार्यात् विकार विशेष योगात् संजायते नैतत पृथगस्ति हेतु शम्भुतामपि तदा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ശിക്ഷരുന്മിളിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ। ശ്രീചൈതന്യ മനോവിശ്വം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാമേഹം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധാവതകമലം ശ്രീഗുരുന്മൈശ്വമാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാൻവിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലിതാ ശ്രീശാഖാൻവിതാംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണകരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ। സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗിരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസ്തുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ। ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज शिवरात्रि है, तो आज स्पेशल शिवरात्रि है। करीबन 14-15 साल में एक बार शिवरात्रि सोमवार को आता है। हाँ, सोमवार भी है, शिवरात्रि भी है। तो शिव जी कौन है उनका थोड़ा सा परिचय देंगे। और आपके हाथ में जो पेपर है ये शिवाष्टकम है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उच्चारित शिवाष्टकम है। तो इसके अंदर थोड़ा एक दो श्लोकों को चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहला ब्रह्म संहिता में शिव जी का परिचय दिया हुआ है। वैसे शिव जी का परिचय हम सब जानते हैं, भागवत में दिया गया, वैष्णवानाम यथा शंभु। नदी में जिस प्रकार गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवतम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे वैष्णवों में कौन है, शिवजी श्रेष्ठ है। तो शिवजी साधारण भक्त नहीं है, भगवान की बहुत प्रिय भक्त है, वेरी डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उनके जो दिवस है उसके दिन उनके बारे में चर्चा करना बहुत हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत में गए थे, उस समय उन्होंने देखा कि वैष्णव जो है वो शिवजी को निंदा कर रहे थे, शिवजी को दर्शन करने के लिए भी वो उनको अच्छा ही लग रहा था। आज दक्षिण भारत में कांचीपुरम जाएंगे, कांचीपुरम में दो कांची है, एक शिव कांची है, विष्णु कांची है। और श्री वैष्णव के जो प्रिय आराध्य 108 मंदिर है, जिसको दिव्य देश कहा जाता है, एक दिव्य देश जो है वो शिव कांची के मंदिर में है। जब उस अंदर में दर्शन करने के लिए जब वैष्णव जाते हैं, वो कैसे जाते हैं मालूम है? जब सीधा मंदिर में आएंगे ऐसा आंग बंद करके गए, और जैसे थोड़ा सा अंदर जाके राइट साइड लेंगे तो इधर विष्णु का मंदिर है। तो शिव जी ऐसे तो बहुत अंदर है, वो ऐसे दर्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी आंख बंद करके जाते हैं ताकि शिव जी का दर्शन ही ना हो, हम खाली विष्णु का दर्शन करने के लिए आए। जैसे विष्णु का दर्शन करके वापस ऐसा मुड़ के जब जाएंगे तो ये आंख ऐसे बंद करके जाएंगे ताकि हमारा दर्शन शिव जी का ना हो। तो नित्यानंद को देख के जोर जोर से हंसने लगे, क्या देखो पागल लोग, शिव जी जो है भगवान के परम भक्त है, और भक्त का दर्शन नहीं करना बड़ा अपराध माना जाता है। शिव जी के प्रति जो अपराध करता है उनको कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होता है, बड़ा अपराध माना गया है। तो इसके बारे में अनेक आचार्य टीका में लिखते हैं, खास करके एक प्रसंग है, वो प्रसंग क्या है, सती का प्रसंग है। उसमें एक श्लोक में जब दक्ष शिव जी का निंदा उन्होंने किया, तब सती कहती है, जो किसके अंदर निंदा करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, इतना शुद्ध इतना शांत, जिनकी संगति से हमारे दोषों को भी वो पूर्ण कर सकते, दोषों को भी गुणों के रूप में देखना, ये शिव जी का आदत है। और उनके अंदर आप दोष देखते हो, ऐसा जो देश देखता है तुरंत उस जगह से भाग जाना चाहिए, या उसको मार देना चाहिए, या अपनी कान बंद कर लेना चाहिए। तब श्री रविश्वनाथ जी ठाकुर पुस्तिका में कहते हैं, जो व्यक्ति वैष्णव का निंदा करता है उन व्यक्ति के साथ हमारा किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ तुरंत उसको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, दंड देना चाहिए, नहीं तो कान बंद करके चले जाना चाहिए, नहीं तो अपना शरीर त्याग कर लेना चाहिए। सती ने उधर अपना शरीर त्याग कर लिया, क्यों त्याग किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्री लविश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण उस जगह से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का दूसरों को दंड देने का अधिकार नहीं होता है। क्षत्रिय है, तुरंत उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए जो अपराध कर रहा है। अगर वैश्य है या शूद्र है उनको तो क्या करना चाहिए, अपना शरीर त्याग कर लेना चाहिए। स्त्रियां जो है उनका कोई ब्राह्मणत्व नहीं होता है तो जन्मतः वो शूद्र माने जाते हैं। सती ने सोचा कि मेरे लिए ये उचित है, मैंने शिवजी का निंदा सुना, इसलिए मैं अपने शरीर त्याग कर दूं। क्योंकि ब्राह्मण का अपना शरीर त्याग करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं होता है तो समाज का सेवा कौन करेगा, समाज को मार्गदर्शन कौन देगा। ब्राह्मण का शरीर या उनका जो जीवन है उनके हाथ में नहीं है, इसलिए अपना शरीर त्याग नहीं कर सकता। ये सती ने इन सब बातों पर विचार करके शिव जी का निंदा सुनते ही सती ने सोचा कि अभी मेरा उचित क्या है, अपना शरीर त्याग कर दो। सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो ये शिव जी का निंदा सुनने का ये परिणाम है। अगर सुनने का ये परिणाम है, जो करता है उसका क्या परिणाम होगा, इसलिए शिव जी का गुणगान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जहां जहां गए थे शिव क्षेत्र में गए, नृत्य किए और शिव जी का प्रसाद ग्रहण किए। जब महाप्रभु संन्यास लेके जब जा रहे जगन्नाथपुरी, सबसे पहला कौन से कहा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मंदिर में जाके भाव विभोरों के कीर्तन किए, नृत्य किए, बिंदु स्वर में उन्होंने नहाया, नहा के शिव जी का महा महा प्रसाद ग्रहण किए। तो ये शिव जी साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु शिव जी का स्तुति किए इन 8 श्लोकों के द्वारा। 9वां श्लोक तो ये है उनका जो महिमा है, शिवाष्टकम गाने का महिमा है। हरिभक्त विलास में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन उपवास करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने छूट दिया, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो। तो हरिभक्त विलास में स्पष्ट रूप में लिखा है शिवरात्रि के दिन उपवास करना है, क्योंकि वो भक्ति प्रदायक भक्तिवर्धक है शिव जी का प्रति उपवास। जिसको करना है कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया है, ये शिवरात्रि के दिन उपवास करना ही है करके, क्योंकि वैसे उपवास के दिन भी उपवास नहीं होता बराबर। उपवासों का लिस्ट बढ़ा दे जाएंगे प्रभुपाद जैसा, शिव जी बड़े दयालु है, इसलिए आप नहीं भी करेंगे, लेकिन शिव जी का गुणगान जरूर कीजिएगा, ग्लोरीफाई लॉर्ड शिवा। तो शिव जी का तत्व का विश्लेषण इस प्रकार है, इस श्लोक में संक्षिप्त में दिया गया है। क्षीरम यथारधि विकार विशेष योगा। क्षीरम का अर्थ है दूध। दूध में जैसे आप विकार डालेंगे, खट्टापन डालेंगे, तो क्या होता है, वो दही बन जाता है। उसी प्रकार कृष्ण जो है वो शिवजी का रूप धारण करते हैं। विकार विशेष योगा संज्ञायते नहि तत पृथगस्ति हेतो। भले ही पृथगस्ति हेतो, वो दोनों एक ही है, दही से दूध, दूध से दही आया है, इसलिए दही और दूध दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्या है, दूध दही बन सकता है लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता है। उसी प्रकार शिवजी जो है कृष्ण है लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। ऐसा एक जगह कहा गया है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शिवजी तत्व को, शिव तत्व को कोई नहीं जान सकता, केवल कृष्ण जानते हैं। स्वयं शिवजी नहीं जानते मैं कौन हूं, इसलिए मोहित हो जाते हैं। ओनली कृष्ण नोज द पोजिशन ऑफ लॉर्ड शिव। शिव तत्व को जानना, राधा तत्व को जानना, ये राधा तत्व को शिव कृष्ण भी विचलित है। राधा तत्व क्या है वो नहीं मालूम उनको, धाम तत्व वो क्या हो नहीं मालूम, गुरु तत्व, ये 4 तत्व है शास्त्र में, जिसको जानना बहुत मुश्किल है, केवल वही जानते हैं ये तत्व क्या है। शिवजी कृष्ण ही जानते हैं ये तत्व क्या होता है। एक है शिव तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और राधा तत्व। कृष्ण तत्व को तो शास्त्र में वर्णन किया गया है, लेकिन अन्य तत्वों को वर्णन करने पर भी केवल कृष्ण ही जान पाते हैं, इतना गूढ़ है शिव तत्व। क्षीरम्यतादि विकार विशेष योगा संज्ञायते नहि तत् पृथगस्ति हेतो। यह शंभुतामपि समुपेति कार्यात्। उपेति कार्यात्, कार्यात् अर्थ क्या है, सृष्टि। हम सब लोग जो जानते हैं शिव जी जो है वो नाश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नहीं, शिव जी का हाथ तीनों स्तर में है, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कार्यों में शिव जी का हाथ है। इधर सृष्टि के स्तर में शिव जी का क्या हाथ है वो बताया गया है, शंभु। जैसे शिव जी का नाम 4 प्रकार का नाम है, एक सदाशिव, शंभु, शिव और रुद्र। तो सदाशिव जो है वो निवास करते हैं, सदाशिवलिंग अष्टकम है कह तम प्रमाणि तत् सदाशिवलिंगम। ये बचपन में हमारे घर के बाजू में शिवालय था, रोज सुबह शिवाष्टकम को चलाते, सदाशिव अष्टकम, सदाशिव को स्तुति करने वाला अष्टक है, रोज सुबह चलाएंगे। और थोड़ा सा दूर में एक राम जी का मंदिर है, वो क्या करेंगे, विष्णु सुप्रभात, विष्णु सहस्त्र नाम चलाएंगे, वो दोनों में कॉम्पिटिशन होता है कौन जोर से चलाएगा। ऐसा होता था हर महीने में उन दोनों को माइक खराब हो जाता था, कंपटीशन चला और सुबह से 5 बजे चलाएंगे, सबको जगा देंगे। अभी मुझे मैं सोच रहा था कि किसको सुनो, विष्णु सहस्त्रनाम को सुनो और सदाशिव लिंगार्चकम को सुनो, कंफ्यूजन तब से था। खास करके दक्षिण भारत में बड़ा कंफ्यूजन है, अरे किसको पूजा करें, शिव जी को करें शिव विष्णु को करें, ये कंफ्यूजन की वजह से लोग क्या करते हैं, कभी उसको करते कभी इसको करते हैं, और कुछ लोग परेशान होकर दोनों को नहीं करते। तो अभी भी कंपटीशन चल रहा है, अभी भी वो लोग छोड़े नहीं है, वो चल रहे कंपटीशन, एक जोर से चलाएगा दूसरा जोर से चलाया, एक ने सोचा कि ये 6 बजे चलाता है मैं 6:45 बजे चलाता हूं, ऐसा करते करते 5 बजे तक पहुंच गए वो लोग। इसको देख के नित्यानंद हंसे थे, क्या हम आप जोर से माइक में चलाओगे तभी कृष्ण सुनेंगे, नहीं भक्ति भाव से सुनना चाहिए। वो भक्ति तभी है जब हम ये सोचते हैं कि कृष्ण जो है वही कृष्ण शिव जी का रूप धारण किए, एक शिव है जो सदाशिव जो है, वो शिव सदाशिव विष्णु तत्व है, वो वैकुंठ धाम में उनका एक लोक है, सदाशिव लोक है, जहां अनेकों उनके भक्त वो उनका सेवा करते हैं। तो सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है, जितने भी देवता इस जगत में है सारे देवताओं का जो मूल शक्ति का स्वरूप कहां से प्राप्त होता है, एक विष्णु तत्व से प्राप्त होता है। जैसे इंद्र है, इंद्र पालन करता है, तो ये पालन करने की शक्ति इंद्र को कहां से आ रहा है, एक विष्णु तत्व है आध्यात्मिक जगत में, उनसे वो शक्ति को प्राप्त करते हैं। वैसे जितने भी देवी देवता है सारे देवी देवताओं का शक्ति एक विष्णु का एक्सपेंशन एक व्यूह से प्राप्त होता है, आध्यात्मिक जगत में स्थित व्यूह से प्राप्त होता है। वैसे ही शिव जी जो है सदाशिव से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं विनाश के लिए, इसलिए सदाशिव जो है हमेशा वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, वो विष्णु तत्व है। अभी इधर शंभु तत्व का वर्णन हुआ, शंभु कौन है, जब सृष्टि करना होता है कृष्ण को, जब महाविष्णु क्या करते हैं साइक्षता वो दृष्टि करते हैं, वो देखते हैं, किनको देखते हैं, वो प्रकृति को देखते हैं। भगवीता में भगवान कहते हैं मम यो निर्महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम ददामि हम, 14वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि मैं ये महद ब्रह्म है इसके ऊपर मैं अपना दृष्टि करता हूं, जिसके द्वारा ये महद ब्रह्म के मैं गर्भ प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा संभव सर्वभूता नाम सारा जगत की सृष्टि होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के साथ डायरेक्टली संभोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति परहा, ये प्रकृति के परे है कृष्ण, तीनों गुणों के संस्पर्क के कभी नहीं आते हैं, उनको रिमोट कंट्रोल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल करने वाले कौन है, शंभु है। तो शंभु कैसे हैं, उपेति, उपेति का अर्थ है कि धारण करते हैं, किसको धारण करते हैं, जब महाविष्णु के दोनों आंखों से एक आंख से जीव शक्ति प्रकट होता है, दूसरे आंख से काल शक्ति का ये दो किरण प्रकट होके वो दोनों किरण का मिश्रण होता है, मिश्रण होने के बाद ये तीनों गुणों का संस्पर्क में आता है, तब वो जो मिश्रित स्वरूप है, तीनों गुणों का मिश्रित स्वरूप किसके साथ, जीव शक्ति काल शक्ति के साथ, वो मिश्रित स्वरूप है शंभु, वो शंभु पार्वती के साथ या भौतिक प्रकृति के साथ ददामि गर्भम, गर्भ प्रदान करते हैं। इसलिए जो शिवलिंग आप देखेंगे वो शिवलिंग के नीचे जो है वो योनि है, मम योनिर महत ब्रह्मा, वो कृष्ण की योनि है, पार्वती है, और शिवलिंग है, और दो उधर काल शक्ति और जीव शक्ति को सूचित करते हुए दो वीर की किरण है, वो कृष्ण के वीर की किरण है, वो महाविष्णु के वीर के किरण है, जो जिसका मूर्तिमान तीनों गुणों के संपर्क में आके लिंग का रूप धारण करके पार्वती के साथ संभोग करके ये सारा जगत का निर्माण हुआ है। शिवलिंग जो है वो सृष्टि लीला का प्रतीक है, तो इतना पवित्र है, इतने महान है, जो गायत्री के द्वारा शिवजी का वरदान मिला, ऐसे शिवजी जो है गायत्री से महान है, लेकिन फिर भी इतना पवित्र चीज है कि जो व्यक्ति इसके ऊपर दूध चढ़ाता है वो निश्चित रूप में वो कभी भी उनके अंदर जीवन में ऐश्वर्य या यश का कभी भी कमी नहीं होगा। इस सारे जगत में जितने भी पालन पोषण हो रहा है वो पालन पोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि गाय की वजह से होता है, गाय दूध देती है और दूध की वजह से व्यक्ति का बुद्धि बहुत तेज होता है, और ब्राह्मणों की बुद्धि जब तेज होता है, जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तब देवता संतुष्ट होते हैं, जिसके द्वारा सारा जगत जो अच्छी तरह से चलता है, सब कुछ गाय के ऊपर निर्भर करता है। तो शिव जी के लिंग के ऊपर गाय दूध को चढ़ाने की वजह से जो घास खाके घास को दूध में परिणत करने की जो आशीर्वाद शिव जी देते हैं, जो ग्वाले है उसको जानते हैं, जहां जहां गौशाला है उसके बाजू में शिवालय होता है। तो क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए गाय दूध नहीं दे रही है तो वो गाय को शिव जी का परिक्रमा किया जाता है, क्योंकि शिव जी जो है वो दूध का निर्माण गाय के अंदर वो शिव जी के आशीर्वाद से होता है। शिव जी उस स्थान में बैठे हैं जहां घास दूध के रूप में परिणित होता है। वैसे शिव जी का महिमा अनंत है, लेकिन फिर भी अभी जराएंगे लिंग। ये जो शंभु है, ये शंभु सृष्टि में भगवान की सेवा करते हैं। ये शंभु जो है महाविष्णु के स्तर में है, और बाद में महाविष्णु के स्तर में शिव जी शंभु ने सारे ब्रह्मांडों का प्रकाशित किया, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में वही शंभु शिव जी के रूप में प्रवेश करते हैं, और वही शिव जी कम से कम दो स्थानों में निवास करते हैं, एक इलावर्त वर्ष में निवास करते हैं, दूसरा निवास करते हैं कैलाश में। और क्या कर रहे हैं उधर? हमेशा राम नाम का जप कर रहे हैं। वे शिव जी पहले भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन जब उन्होंने कालकूट विष को पिया, आपको तो मालूम है कि जब ये हुआ था समुद्र मंथन हुआ था, तो विष धारण करने के बाद तब शिव जी ने नाम संकीर्तन करना शुरू किया। शिव जी नाम संकीर्तन करना शुरू किया नीलकंठ में, जब हरिद्वार की ओर से बद्रीनाथ जाएंगे, हरिद्वार से ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश का जो गंगा का उस पार में आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ेगा, वो पहाड़ को पार करेंगे, एक ऐसा सुंदर पर्वत है, उसको देखते बड़ा अद्भुत पर्वत है, तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, बस बहुत धीरे धीरे जाता है। उधर जाएंगे आपको नीलकंठ महादेव दिखेंगे, नीलकंठ। तो नीलकंठ ऐसा स्थान है जब शिवजी अपने विष को बांध करके तुरंत उधर गए, क्योंकि विष इतना भयानक था, शिवजी को भी बहुत जलन होने लगा, उन्हें सोचा ऐसा लगता है कि मुझे अपना शरीर त्याग करना होगा, मैं नाम संकीर्तन करके शरीर त्याग करूंगा, अभी तक तो ध्यान कर रहा था। आई उधर जाके वो राम नाम संकीर्तन करने लगे। इधर पार्वती गई भगवान से प्रार्थना करने, कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, तपस्या करने लगी, और जाके शिव जी का गला उन्होंने ऐसा दबा दिया ताकि वो जहर जो है अंदर तक नहीं जाए। और पार्वती का तपस्या का स्थान है, और हमको चंड के जाना पड़ता है, नीलकंठ है। तो नीलकंठ में उधर जाके शिव जी ने बहुत तपस्या किया। तो कैलाश से ऐसे उतर के आए थे, फिर कैलाश जाने तक उनको हो नहीं पाया, इसलिए नीलकंठ में जाके उन्होंने तपस्या किया। वैसे शिव जी के अनेकों अनेक लीलाएं हैं, आपको जहां जहां कृष्ण की लीलाएं हैं समझ लीजिए शिव जी की लीला होगा ही, तो क्योंकि कृष्ण और शिव वो दोनों एक दूसरे के इतना प्रिय है, एक दूसरे को छोड़कर रह नहीं सकते। जहां आप देखिए शिव जी का मंदिर है, वो निश्चित रूप में अगर कृष्ण का मंदिर आएगा, अगर नहीं है तो आएगा, और है तो उस मंदिर को देखभाल करने वाले, क्योंकि शिव जी जो है क्षेत्रपाल है, विष्णु क्षेत्र को देखभाल करने वाले हैं, वॉचमैन जैसे हैं। वो कैसे वॉचमैन? ऐसा आरेगर वॉचमैन नहीं है, परफेक्ट वॉचमैन है, परफेक्ट सिक्योरिटी है। अयोग्य व्यक्ति को कभी भी कृष्ण के मंदिर में जाने नहीं देते। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति कृष्ण के मंदिर में आया, ये समझ लीजिए कृष्ण शिवजी ने अनुमति दिया तभी आया। जिनका शिवजी का अनुग्रह और अनुमति नहीं है वो कभी भी कृष्ण के मंदिर में आ नहीं सकता। ठीक है ना? कम क्षेत्रपाल है। संयोग देखिए हमारे इस्कॉन के तीन मंदिर है, चौथा भी पारगर में आया है, तो चौपाटी है, गिरगांव बाबुलनाथ जी है, और जू में सामने कौन है? हाँ, कौन सा नाम है उनका नाम? बाबुलनाथ है। इधर इधर शिव जी का नंबर शिवालय लिखा है, उसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, शिवालय अभी हमारा इधर पीछे है ना, शिव जी का मंदिर। आप सब लोगों कीर्तन करने जाना चाहिए, शाम को हो, यू आर देयर इन इवनिंग। हाँ, आपका टिकट कब है? कल का टिकट? तो आज शाम को सब भक्तों को कीर्तन करने जाना है। कितने बजे निकलोगे? 5:30 बजे। 5:30 बजे पीछे शिवालय में जाकर धूमधाम कीर्तन करना है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनके भक्त है, उनका सेवा कर रहे हैं। तो भक्तों का स्तुति करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो यीशु जी और कृष्ण के बीच में गहरा संबंध है। समवेदी कार्य सृष्टि में शंभु। अभी स्थिति, स्थिति का अर्थ क्या है? पालन। शिव जी पालन कैसे करते हैं? जब कोई व्यक्ति का पालन होता है, दो प्रकार का होता है पालन। एक भौतिक पालन होता है, दूसरा आध्यात्मिक पालन होता है। भौतिक शक्ति को, शरीर को मेंटेन करना है, आध्यात्मिक जीवन को मेंटेन करना है। ये भौतिक शरीर को मेंटेन कैसे करेंगे शिव जी? शिव जी जो है ये पंच महाभूत है, इनके नियंता है। तभी हमने आपको ये शिवाष्टकम दिया है, उसमें पहला श्लोक देखिए जिसके अंदर क्या लिखा है। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। नमो नमस्ते, मैं प्रणाम करता हूं। कौन कह रहे बात? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिदशेश्वराय। त्रिदशा, त्रिदशा का अर्थ है कि 33 कोटि देवता। ये 33 कोटि देवताओं का ईश्वर है शिव जी, इसने क्या कहा गया? देवादिदेव शंभु। ईश्वराय भूतादिनाताय मृदाय नित्यम भूतादिनाताय। ये भूत का अर्थ ये नहीं कि जैसे भूत होता है ना, वो भूत नहीं। वो भूतकाल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इधर भूत का अर्थ है पंच महाभूत। भूतादिनाथाय, ये पंच महाभूतों के नाथ है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं जैसे शिवजी नचाते वैसे पंच महाभूत नाचते हैं। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिनसे सारा पृथ्वी ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है, ये पंच महाभूतों के ईश्वर शिवजी है। इसलिए शिवजी के शिवलिंग जो है वो 5 प्रकार के हैं। क्या है वो? जैसे कुछ है पृथ्वी लिंग, अंबुलिंग, आकाशलिंग, अग्निलिंग, वायुलिंग। एक शिवलिंग में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, उधर बोलेंगे शिवजी है, वो कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्या वो आकाशलिंग है। एक जगह जाएंगे आपको अग्नि दिखेगा। आप तिरुपति गए, तिरुपति के बाद में कालहस्ती, श्री कालहस्ती, उधर आपको अग्नि दिखेंगे, उधर लिंग नहीं होगा, अग्नि होगा। क्या है वो? अग्निलिंग है। ये शिवजी अपने आप को ये पंच महाभूतों में लिंग में प्रकाशित करके क्या करते हैं? भूतादिनाता है। जो भी भौतिक वस्तु हमको प्राप्त है वो केवल शिवजी की वजह से प्राप्त है। इसलिए जो शिवजी को प्रार्थना करते हैं उनको पंच महाभूतों को कभी कमी नहीं होता है। इससे सब लोग जाते हैं, ओ शिवजी मुझे वो दो ये दो, शिवजी परेशान है उन लोगों से। अब एक है किसी को प्रसन्न करके लेना। मेरी माँ रसोई कर रही है, वो बच्चिया की बोलती है, ओ मम्मी मम्मी आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। मम्मी परेशान होकर बोलती है, ले लो जाओ पैसा लेके जाओ खरीद। वैसे मम्मी ने दिया लेकिन प्रसन्न होके नहीं दिया। ये शिवजी के बच्चे सोचते हैं कि हम शिवजी को प्रसन्न करके हम उनसे वरदान लेंगे। शिवजी प्रसन्न होकर वरदान नहीं देते, तंग आके वरदान देते, चलो भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि उनको राम नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 राम। कोई आगे बोल रहा है, ओ शिव आई वांट दिस मुझे चाहिए मुझे चाहिए, शिवजी बोलते हैं बहुत डिस्टर्बेंस कर, जल्दी ले जाओ गेट लॉक। लोग सोचते आशीषोष है, बोल जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, वो प्रसन्नता से नहीं दिया उन्होंने। इसलिए शिवजी के भक्त होते हैं जो शिव तत्व को, वास्तविक शिव तत्व को नहीं जानते हैं, जो शिवजी की उपासना करते हैं कि भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए, वो प्राय असुर होते हैं। आपको मालूम है कि शिवजी के जो भक्त है रावण ने क्या किया? शिवजी की उपासना किया, बहुत भक्ति किया, इतना भक्ति किया शिवजी को आना पड़ा। शिवजी बोले मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बताओ। रावण ने कहा मुझे आप आशीर्वाद दो ताकि मुझे मरना सकूं। बहुत सारे आशीर्वाद उन्हें प्राप्त किया, ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया, अनेकों असुर शिवजी से बहुत सारे वरदान को प्राप्त किए। अभी रावण ने सोचा मैं शिवजी को उपासना करूंगा, इस लिंग को और मैं लंका में लेके रखूंगा, मैं पराजय रहूंगा, कोई पराजय मेरे पर कोई जीत नहीं सकता। और शिवजी उस लिंग, रावण उस लिंग को लेके आ रहा था। जो भी व्यक्ति वो लिंग का उपासना करेगा, जहां वो लिंग है उस राज्य में कोई पराजय नहीं होगा। भाई सारे देवता लोग एकदम घबरा गए, क्या हो जाएगा, रावण ऐसा उपासना करेगा क्या हो जाएगा। गणेश जी को भेजे, गणेश जी होगा भगवान की योजना से रावण को थोड़ा सा नेचुरल कॉल्स हुआ, तो उधर गणेश जी दिखे। रावण ने कहा गणेश जी आप रखो, गणेश जी ने दूसरे रूप में आए थे बालक के रूप में, ये शिवलिंग को पकड़ो मैं जाके आता हूं। तो रावण गए तो गणेश जी ने उधर रख दिया शिवलिंग को। रावण आके शिवलिंग को उठाने के लिए प्रयास कर रहे, नहीं उठा पा रहा। और रावण इतना क्रोधित हो गया शिवजी के ऊपर, वो शिवलिंग को उन्होंने तोड़ा, तोड़ के उसके चूर चूर करके अलग अलग जगह फेंका, सात जगह फेंका था। जिस जगह शिवलिंग को गणेश जी ने रखा था, जहां से शिवलिंग हिला नहीं है, वो जगह का नाम है गोकर्ण। जैसे भागवत में गोकर्ण का महिमा आता है, भागवत महिमा गोकर्ण की स्टोरी आता है, गोकर्ण करके एक जगह है। आप कोंकण रेलवे में पकड़ के जाएंगे, गोवा पार करके जो पहला स्टेशन कर्नाटक में आता है वो गोकर्ण है, उधर वो शिवलिंग है। अब देखिए ये शिव जी के पता ऐसे ही होते हैं, तो जैसे शिवलिंग हिला नहीं, जिस शिव के प्रति उनकी भक्ति था उसी शिव को मारने लगा रावण। ये भक्ति थोड़ी ना हुआ, ये क्या हुआ, क्रोध फ्रस्ट्रेशन, मेरा बात नहीं सुनते हो, मेरे साथ नहीं हो, इसलिए तुमको मारूंगा, मैं इसको तोड़ूंगा। इसलिए रावण को बड़ा शिव भक्त कहा जाता है, लेकिन क्या भक्त है, इस प्रकार का भक्त है जो प्राय जो शिव तत्व को जाने बिना जो शिव की उपासना करते हैं वो असुर होते हैं, प्राय असुर होते हैं, प्राय असुर। कुछ ऐसे हैं जिसके मन में शिव कौन है नहीं मालूम, बड़ी लेकिन फिर भी शिव जी का उपासना किए, लेकिन सरल है हृदय, वैसे लोगों को शिव जी कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, हमको उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम शिव भक्त थे लेकिन शिव जी ने ही हमको इधर कृष्ण के पास भेजा है, ऐसा अनेक लोगों का इस प्रकार का अनुभूति है, वनवाली लोगों का अनुभूति है शिव जी के प्रति। बहुत लोगों का ऐसा अनुभूति है, जैसे मार्कंडेय, मार्कंडेय ऐसा था 14 साल में उनका मृत्यु होना था, लेकिन मार्कंडेय ने क्या किया, उनके माता पिता बहुत दुखी हो रहे थे, तो किसी ने कहा कि आप शिवजी को उपासना करोगे, शिवजी जो है वो काल के नियंत्रक है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र त्रयंबकम निजाम है, ये महामृत्युंजय मंत्र जप करते हैं ताकि मेरा मृत्यु नहीं आए। तो वैसे ही ये मार्कंडेय जप करते हुए शिवजी को उपासना कर रहे थे, और यमराज आए, यमराज ने क्या किया, अभी समय हो गया मार्कंडेय का भी जाना है, तो जैसे यमराज आके वो यमपाश को डाले, तुरंत मार्कंडेय ने क्या किया, शिवलिंग को आलिंगन कर, तो वो शिव पा वो यम पास किसके ऊपर गिर पड़ा, वो शिव जी के गले में आया, शिव जी तुरंत पकड़ हुए राज के पास, कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम मेरे ऊपर गला यम पास डाल रहे हो, क्योंकि जो टाइम डिपार्टमेंट में भगवान का काल शक्ति, पूरा काल शक्ति के द्वारा भगवान पूरा जगत को नियंत्रण करते हैं, और ये काल शक्ति को नियंत्रण करते हैं भगवान, ये भगवान की काल शक्ति के द्वारा पूरा जगत नियंत्रण करते हैं, लेकिन काल शक्ति को व्यवस्थित करने वाले कौन है, शिव जी है। ये जगत के अनेकों के डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, रेन डिपार्टमेंट, तो ऐसे जो टाइम डिपार्टमेंट के अधिष्ठान देव शिव जी, और उनके लाइन में नेक्स्ट असिस्टेंट कौन है, यमराज, उनका असिस्टेंट कौन है, सूर्य। अभी यमराज शिव जी के असिस्टेंट है, काल के निर्णय करने वाले, किसका कितना काल है, अभी वो हृदय शिव जी के ऊपर पास जा सकते हैं। तब शिव जी ने कहा यमराज को, तुम ये नहीं कर सकते हो। यमराज ने कहा कि आपके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, कि मार्कंडेय का समय हो गया है। तब शिव जी ने कहा अभी उनका समय हो गया है, लेकिन मेरा शरण लिया है, वो मेरा शरण लिया है, इसलिए आप उसको छू नहीं सकते हो। इसलिए लोग सोचते हैं अभी बस हम शिव जी का शरण लेंगे तो अकाल मृत्यु हरणम, सारा मृत्यु मेरा अकाल मृत्यु जो है, मृत्यु से जीत सकता हूं और दुर्घटनाएं से मैं बच सकता हूं, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन बात का स्टोरी इस प्रकार है, शिवजी ने मार्कंडेय को कहा कि ये जो तुम्हारा जीवन मिला है, अस्तित्व नुमर मृत्यु हो चुका है, ये जो जीवन मिला है वो कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। तब शिवजी ने मार्कंडेय को कृष्ण भक्त बनाया और शिवजी की कृपा से मार्कंडेय ने तपस्या की कृष्ण के प्रति, कृष्ण प्रकट हुए। तो मार्कंडेय ने कहा मैं आपके पास जाना चाहता लेकिन मेरे एक इच्छा है, आपका प्रकृति क्या है वो देखना चाहता हूं। भागवत में वर्णन है कि कृष्ण ने मार्कंडेय को पूरा प्रकृति दिखाया, ये प्रकृति क्या है, भौतिक जगत क्या है। वो मार्कंडेय पूरा देखने के बाद डर गए, बस बस बंद करो। जैसे आपको हॉरर मूवी क्या होता है मालूम है, हॉरर मूवी को क्या बोलेंगे हिंदी में, डरावनी पिक्चर होता है ना भूत आ गया वो भी, ये भौतिक जगत भी हॉरर मूवी है। ये देखते मार्कंडेय ने कहा ओ बस बस बस, तब कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया जब प्रलय होगा तो मेरा दर्शन करोगे। तो मार्कंडेय ने प्रलय में भगवान को दर्शन किया। क्या दर्शन किया, किस रूप में दर्शन किया, करारविंदे पदारविंदम, भगवान के हाथ करारविंद के द्वारा उनको पदारविंद को पकड़े। तो पकड़ के क्या कर रहे हैं, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, अपने मुख में वो डाल रहे, वटस्य पत्रस्य नश्यामि बालम मुकुंदम सदा स्मरामि मनसा स्मरामि। तो ऐसे मुकुंद बालम मुकुंदम भगवान ने मार्कंडेय को दर्शन दिया। क्यों दर्शन दिया, वैसे शुरुआत में तो है शिवजी के बस, लेकिन शिवजी का उपदेश भक्ति के उपदेश। लेकिन जो भौतिक अभिलाषा से शिवजी के पास आते हैं, शिवजी उनको भक्ति प्रदान नहीं करते, ठीक है लेके जाओ जल्दी पास, मुझे परेशान मत करो। तो इस प्रकार शिवजी जो है भौतिक चीज को मेंटेन करते हैं, आध्यात्मिक चीज को मेंटेन करते हैं, हर प्रकार के जीवों को संभालते हैं शिवजी। ऐसा कौन है इस जगत में जिसके लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए ग्रंथ का रचना नहीं किया है। सबसे पहला जो एकदम नीच निकृष्ट लोग होते हैं उनको ले भी कुछ दिया, संत शास्त्र प्रदान कर, जो अति तमोगुण में रहते हैं जिनका केवल एक ही चीज है नशा करना और दूसरों को परेशान करना, तांत्रिक चीजें करना। शिवजी ने कहा ठीक है आप तंत्र शास्त्र लो, ये करते करते आपका कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं शुद्धिकरण होगा, ये करते करते आप कुछ आध्यात्मिक प्रगति करोगे। और कुछ लोग हैं जो भौतिक कामना से युक्त है, उनको बस पति चाहिए पत्नी चाहिए घर चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ठीक है आप आगम शास्त्र लो, आगम शास्त्र के वक्ता शिव जी है। लेकिन शुद्ध भक्ति जो करना चाहते कृष्ण प्रति, उनके लिए शिव जी दो प्रकार के शास्त्र दिए। एक ये पंचरात्रिक शास्त्र दिए, सारे पंचरात्रों के पीछे शिव जी का हाथ है, उन लोग जो पूजा का विधि विधान करते हैं ये पंचरात्रिक विधि है, उसका वक्ता कौन है शिव जी है। और शुद्ध भक्तों के लिए शुद्ध भागवत का रसपान भी शिव जी कराते हैं। इसलिए हर प्रकार की श्रेणी के जीवों को, हर प्रकार की श्रेणी के जीवों को शिव जी भक्ति में प्रगति करने का एक मौका प्रदान करते हैं। इसलिए महान आचार्य है, आचार्य जो हैं वो यही सोचते हैं कैसे मैं जीवों को उद्धार करूं। इसलिए शिव जी एक संप्रदाय के आचार्य है, रुद्र संप्रदाय के आचार्य है। जो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के आचार्यों में गिने जाते हैं, तो जो गुजरात में श्री कृष्ण शरणम्मा जपते हैं रुद्र संप्रदाय के हैं, वल्लभ आचार्य, वो शिवजी से कटोरे, तो इसे शिवजी का आचार्य है, ग्रेटेस्ट ऑफ आचार्य। तो आगे चलते हुए हाँ शिवजी भागवत का रसपान कराते हैं। भागवत के अनेकों प्रसंगों में शिवजी किस प्रकार कृष्ण गुणगान करते वो है। आज शिवरात्रि में हर बार शिवरात्रि में रुद्र गीत के ऊपर प्रवचन देता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग रहे इसलिए मैं कुछ और लिया। शिवजी रुद्र गीत को गाते हैं प्रचेताओं को, रुद्र गीत में सारे तत्व का निरूपण किया, किस प्रकार संकर्षण कौन है, प्रद्युम्न कौन है, रुद्र कौन है, वासुदेव कौन है, और हर चीज जो भी जानने लायक विषय है कृष्ण के बारे में सब कुछ रुद्र गीत में प्राप्त हो जाता है। गुरुवायूर में मम्मी और शिवा उस जगह रुद्र तीर्थ है जहां प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे, शिवजी अपने अनुकंपा से प्रचेतागण निमंत्रण दिए, शिवजी उनकी भाईचारा को उनकी तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न होकर उनको आके मंत्र प्रदान किए। रुद्र गीत एक मंत्र है, तो जो भक्त इनके पास भागवत है वो चौथा स्कंद खोल के देख सकते हैं जिसके अंदर रुद्र गीत है, वो पढ़ सकते हैं आज। तो ये भागवत की विधि में भी शिवजी का योगदान है, जहां जहां कृष्ण का योगदान है उधर शिवजी का योगदान है। तो ये मेंटेनेंस हो गया, क्रिएशन मेंटेनेंस स्थिति हो गया, और प्रलय। प्रलय क्यों करते हैं शिवजी, उसके पहले जाने के लिए प्रयास करेंगे। ये प्रलय का अर्थ है दंड देना या पूरा नाश करना, नाश करना या दंड देने का अधिकार किसको दिया जाता है? सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे किसी को फांसी चढ़ाने की जो जो क्षमता है, जो अधिकार है, फांसी का दंड देने का अधिकार किसको दिया गया है? सबसे योग्य जज को दिया जाता है, ठीक है। अगर अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए वो किसी को भी दे देगा, ये इसने मुझे अरब गलत कहा, चलो मैं उसको फांसी दे देता हूं। जो एकदम निष्पक्ष है, जो किसी के अंदर दोष को नहीं देखते, वो दोष को भी गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को भगवान ने चुना। प्रलय करने की या दंड देने का अधिकार, दूसरे शब्दों में दंड देने का ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किसी को दंड देना उस व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, अवगुण को भी गुण को देखने की स्वभाव जिसके अंदर है वो शिवजी के पास है। केवल इस गुण की वजह से भगवान ने शिवजी को अधिकार दिया, चलो आप तमोगुण को नियंत्रण करो, किसी को मारना, किसी को पीटना, दंड देना, सजा देना, ये सब जो तमोगुणी कार्य है। तो ये तमोगुण के द्वारा ही होता है। तमोगुण को नियंत्रण करने के लिए बहुत उच्च प्रकार की चेतना होना चाहिए, वो शिवजी के पास है। इसलिए भगवान ने शिवजी को चुना, तुम प्रलय करो। अगर किसी और को दिया जाए अधिकार, तुरंत प्रलय कर देते हैं, अरे ये तो फालतू लगे, चलो खत्म कर देते। इस जगत के लोगों को सहन करना साधारण चीज नहीं है। जैसे पिताजी है, वो बच्चे को हर प्रकार का सुविधा दे रहे, गाड़ी, नौकर, पढ़ने का जो भी व्यवस्था, कंप्यूटर, जो चाहे। पिताजी बोल रहे हैं, बेटा इस साल तुम पास हो जाना। वो बेटा जैसे हाँ हाँ करके वो पास जो फेल होता है, चूजा ठीक है नहीं हो, ये साल और एक साल, चलो और एक, क्या क्या चाहिए और बोलो, बोलो नहीं वो चाहिए, चाहिए। सब सुविधा दे रहे, अगले साल भी फेल हो गया, शिवजी जी ठीक है फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं और एक साल, अभी कितना साल करेगा वो। वैसे शिवजी है, हम सबको सुविधा दे रहे हैं कि बेटा ये सब सुविधा लेना, कृष्ण का भक्ति करते हुए इस जगत से मुक्त हो जाना, नहीं 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 अगली बार वापस जन्म लेना है, अरे फेल होके वापस आया। तो शिवजी बोले ठीक है और एक, चलो और एक बार और सुविधा देता हूं। ऐसा करते करते सारे जीव, एक भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने का रुचि नहीं ले रहा है। तो शिव जी एक दिन परेशान होकर बोलते, अभी बस तो स्कूल बंद करो अभी, तो वो प्रलय है। तब वो तीसरा अंक खोलते हैं, खोलते सारा जगत को प्रलय कर देते हैं। तो ये शिव जी का विशेष कार्य, इसे प्रलय करते हैं। प्रलय कैसे करते हैं शिव जी? तो सोचते हैं कि मैं स्वयं कैसे करूं। तो शिव जी के अंदर सारे शक्तियां हैं और उनके अंदर ये तमोगुणी शक्तियां भी हैं। वो तमोगुणी शक्तियों के द्वारा आवेश करके 11 रुद्रों को प्रकाशित करते हैं, भैरव लोगों को प्रकाशित करते हैं, 11 रुद्र। ये 11 रुद्र जो है वो ये जगत की प्रलय करते हैं। उस समय कृष्ण शिवजी कृष्ण का ध्यान में, राम का ध्यान जप करते ध्यान में लगे हुए हैं। तो ये 11 रुद्र अस्तित्व में जीव है, शिवजी के द्वारा शक्ति का आवेश करके वो करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए शिवजी स्वयं प्रलय नहीं करते, क्योंकि उनका हृदय में इतना दया, इतना सहनशीलता है, वो नहीं करना चाहते हैं। तो शिवजी के प्राकृति के बारे में आप जानते हो, कैसे प्रकट हुए थे? ब्रह्मा के कुटे से प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए थे, उस क्रोध में शिवजी को प्रकाशित किया। शिवजी रोते रोते आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पहले वाले पुत्र से मेरा बात नहीं सुना, तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी आप जाके सृष्टि करो। जब शिव जी सृष्टि करना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ध्यान में थे, बाद में उनको कुछ आवाज आया, फटाके का आवाज आया, धाड़ फाड़ फोड़ फोड़ हो रहा है सब। ब्रह्मा जी आंख खोल के देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड में क्या हो रहा, उत्पात हो रहा है। और शिव जी से बहुत सारे उत्पन्न हो रहे, भूत प्रेत गण उत्पन्न हो रहे, भूतगण उत्पन्न हो रहे, और हर जगह पूरा तहलका मच गया। जैसे आप कोई स्कूल में जाओ, कोई क्लासरूम में जिसके अंदर कोई टीचर अभी तक आए नहीं, तो क्या होता है? तो ब्रह्मा जी ने यही देखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को, आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी क्या है, हमको कुछ और प्रकार का भी सृष्टि करना है, आप जाइए, आप अपने सारे भूतगणों को लेके आप उनको संभालिए, क्योंकि इनको आप ही संभाल सकते हो। अभी शिव जी उन सारे भूतगणों को लेके जाते हैं, शमशान में बैठ के उनको संभाल रहे हैं। वो भूतगणों को झेलना साधारण चीज नहीं है। उसका वर्णन कुछ शास्त्र में हुआ है, कुछ पुराण में हुआ है कि किस प्रकार शिव जी इस भूतगणों को भक्ति सिखाते हैं। अभी आपको कोई बताए, ये आपको एक भूत देता हूं, उसको हरे कृष्ण हमसे जप करना सिखाओ, आप पहले भाग जाएंगे। लेकिन शिव जी इन सब भूतगणों को शिक्षा देते हैं। एक बार रुक्मिणी गई भगवान के पास, ने कहा कि अभी हमको एक पुत्र चाहिए, हमने सुना कि शिव जी के पास प्रार्थना करेंगे हमको अच्छा पुत्र प्राप्त होता है, तो हमेशा भगवान ढूंढते हैं शिव जी का गुणगान करने की। तो कृष्ण और रुक्मिणी दोनों कैलाश जा रहे थे, जब कैलाश जा रहे थे तो कैलाश में सब भूतगण हैं, तो भूतगणों ने देखा, दो भूतगणों ने देखा कृष्ण की सुंदरता को, देख दाति मोहित हो गए। सोचा कि शिवजी कह रहे थे ऐसा एक भगवान है जो बहुत सुंदर है, हो सकता है वही आए इधर, हम दोनों जाकर उनको स्वागत करेंगे। भूतगण जिस प्रकार कृष्ण को स्वागत कर रहे हैं, रुक्मिणी परेशान हो गई। दक्षिण भारत में जाएंगे गुरुवायूर मंदिर में, इसका पूरा स्टोरी को ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो अगर उदाहरण के रूप में दिया जाए, अगर एक दिन आपके पास वो एक शेर आएगा और शेर आके बोलते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो बेचारा शेर आपको खाने के लिए नहीं आया, आपको प्रेम करने के लिए आया, तुम क्या करो, क्या सहन कर पाओगे? तो ये भूतगणों का भक्ति केवल शिवजी सहन कर सकते हैं। रुक्मिणी की पसंद परेशान, हम लोग कहाँ है? कृष्ण ने कहा ये शिवजी आपको मालूम है, इन लोगों को संभाल के रखते हैं, इन लोगों का संभालना मेरा बस का बात नहीं है, शिवजी कर सकते। तो अनेक प्रकार से स्वागत किए, नीचे पैर पड़े, कोई कभी आलिंगन करके नीचे गिरते हैं, करते करते कैसे भी करके वो शिवजी के पास लेके आए। और जैसे शिवजी तो एकदम सरप्राइज हो गए, पता नहीं कैसे कृष्ण आए इधर, और कृष्ण ने क्या किया, शिवजी को बिल्कुल मौका नहीं दिया। आते आते ही कृष्ण ने शिवजी का स्तुति करना शुरू किया और शिव परिवार समेत खड़े हो गए शिवजी, और ऐसा मना करे, कृष्ण आप क्या कर रहे हो, मेरा कौन गान कर रहे हो, मैं तो आपका दास हूं। लेकिन स्तंभित हो गए शिवजी, कुछ उच्चारण नहीं हो पा रहा है, वैसे पार्वती वैसे कार्तिकेय वैसे गणेश, बहुत सुंदर संवाद है, जहां कृष्ण अंदर ही अंदर हंस रहे, उनको मालूम है शिवजी बोल रहे मत करो स्तुति, लेकिन फिर भी स्तुति किए जा रहे हैं, और शिव जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो आप, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहां सारे भूतगण इस संवाद को देख के एकदम अचंभित हो गए। तो इतना दिन से हमारे जो गुरु है जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो यही है क्या, तो सब भूतगण आके फिर वापस कीर्तन करने लगे। तब शिव जी होश में आए, तब तुरंत प्रणाम किए सारे शिव परिवार। तब रुक्मिणी कहती है कि शिव जी को हम आए आपसे पुत्र का वरदान मांगने के लिए। तब शिव जी कहते हैं ये सारा जगत को वरदान कर देने वाला ये है, तो मैं कौन होता वरदान देने वाला। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर भक्ति तत्व को निरूपण करने वाले, भक्ति रस को प्रकाशित करने वाले संवाद शिव जी और कृष्ण के बीच में हुआ है। शिव जी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते कृष्ण के लिए। कैसे, कोई आर्टिस्ट होता है वो कोई भी रोल करने के लिए तैयार है, ड्रामा अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है ना। अगर उसको विलन का भी रोल दिया जाए करेगा, ड्रामा सिनेमा अच्छा होना चाहिए बस। कभी कभी शिवजी विलन बन जाते हैं, क्यों, कृष्ण का जो लीला का जो ड्रामा अच्छा होना चाहिए बस। जैसे कुछ असुर है, असुरों को नाश करना है कृष्ण को, नाश तभी होता है जब वो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। अभी ये असुर जो है कृष्ण के साथ युद्ध करने की हिम्मत तभी करेंगे जब शिव जी का साथ हो। इसलिए कभी कभी शिव जी असुरों का पक्ष लेते हैं, बाणासुर का पक्ष लिया, क्यों, क्यों, अगर बाणासुर का पक्ष नहीं होता बाणासुर कभी युद्ध नहीं करता कृष्ण के साथ, तब बिना आशा दुष्कृताम नहीं हो सकता है, उनका दमन नहीं हो सकता है। वो दमन तभी होगा असुरों का जब शिव जी हिम्मत देंगे। अगर रावण के साथ भगवान का युद्ध, रावण को इतना हिम्मत था कि अगर सब फेल हो जाए, लास्ट में है ना मेरा शिव, लेकिन जब लास्ट दिन जब शिवजी से प्रार्थना किया, शिवजी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तब रावण के हृदय में भय उत्पन्न हुआ। तब रावण कन्विंस हो गया था अभी मैं मरने वाला हूं। तब तक उनको हिम्मत था, जब शिवजी ने उनको कहा जिसको मैं आराधना करता हूं उनको, उनके अगेंस्ट में मैं कैसे युद्ध करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं बचा सकता हूं तुमको जरूर। तो रावण ने कहा कैसे बचाऊं, कैसे बचा सकते बताइए, मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, अभी भी मौका है, तुम खाली सीता को लौटा दो, खाली सीता को लौटा। फिर भी रावण ने बात को नहीं सुना, तुम भी ऐसे करते हो शिव जी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मैंने इतना भक्ति किया तुम्हारे लिए, तुम्हारा भी यही विचार है। शिवजी ने कहा यही एकमात्र तरीके से मैं आपको बचा सकता हूं, और कोई रास्ता नहीं है। तो रावण ने सुना नहीं। वैसे शिवजी शंकराचार्य का रूप धारण करते हैं, विलन का रूप धारण किया ताकि भगवान का लीला अच्छा हो, ताकि सारे जितने भी असुरी तत्व है वो सबको संग्रह करके माया बहुत वास की रचना किया, ताकि जितने भी असुर लोग उस प्रति आकृष्ट हो जाए, सारे भक्तों को छोड़ दे, नहीं तो भक्तों को परेशान करेंगे। अभी आपने बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाया, मंदिर बनाया, बहुत सारा आर्किटेक्चर है, सब कुछ है, वो क्या करेंगे, सब कबूतर आके उसके ऊपर खराब कर बैठेंगे। तो इसके लिए वो मंदिर के बाजू में एक बड़ा चबूतरा बनाना चाहिए, बहुत सारे सुंदर सुंदर सुरंग उसके अंदर, सब कबूतर उधर चले जाएंगे। इसलिए शिवजी ने क्या किया, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत को रक्षा करने के लिए मायावाद भाष की रचना किया, तो सारे कबूतर जैसे लोग हैं तो सब लोग उधर जाकर आकृष्ट हो जाए। अभी देखो यही वेदांत है, यही वेदांत पढ़ते जाएंगे और शुद्ध वैष्णव सिद्धांत उसको बचाएंगे। तो ऐसे शिवजी का गुणगान अनंत है शास्त्रों में। तो इधर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिवजी का ये शिवाष्टकम में उनका स्तुति करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा भूतादिनाताय मृदाय नित्यम, मृदाय नित्यम, मृदाय का अर्थ है हमेशा आनंद में रहते हैं, इज ऑलवेज इन हैप्पीनेस, कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस। और उनका जो गुण है वो एक भी दोष नहीं है, शिवजी के चरित्र में एक भी दोष नहीं दिखाई पड़ता है। वैसे साधारण दृष्टिकोण से, वैसे तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए कृष्ण में भी कोई दोष नहीं, क्योंकि दोष उनसे परे है। वो लोग शिवजी के भक्त ज्यादा क्यों हैं, विष्णु के क्यों कम हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कृष्ण जो है चिरहरण किया, वो किया, ये किया, लोगों को लगता है कि इसके तो दोष है। ऐसे नहीं है, त्रिगुणातीत है, लेकिन लोग ऐसे लगते हैं शिवजी देखो कितना अच्छा है, हम सबको बचाने के लिए विष भी लिया, लेकिन ये दंड इससे और कितने दयालु है, इसलिए लोग सोचते हैं कि शिवजी भगवान है। तो एनी हाउ, तो अनेकों गुणों से संपन्न है। गंगा तरंगोत्य बालचंद्र, तो उनके सर के ऊपर क्या है, गंगा जी, तो गंगा की तरंग है बह रही है और उसके ऊपर चंद्र है, जिससे शिवजी एक नाम है चंद्रमौलीश्वर। ये जो घटना है, चंद्र को शाप दिया, किसने शाप दिया था, दक्ष ने शाप दिया तुम क्षीण हो जाओगे। अभी चंद्र को मालूम है अभी दोनों कौन है, कंपिटिटर कौन है, शिवजी है। तो दक्ष को भी उन्होंने पाठ पढ़ा दिया, तो दक्ष को घोड़े का सर दे दिया, तो चंद्र तुरंत गए शिवजी शिवजी बचाओ बचाओ। तो शिवजी उधर तपस्या कर रहे थे, ये जगह है उडुपी, उडुपी क्षेत्र में हुआ, इसलिए उडुपी का नाम उडुपी पड़ा। आप सब लोगों को उडुपी यात्रा में जाना चाहिए, कल अनाउंसमेंट हुआ था, कल फ्रेंड ऑफिस में थे। तो उडुपी मध्वाचार्य का स्थान है, ब्रह्मवद गौड़ी संप्रदाय का स्थान है, उधर मूल रूप में शिवजी का मंदिर है। तो जिस स्थान में चंद्र जाके शिवजी का शरण ग्रहण किया वही स्थान है, उधर एक अति प्राचीन मंदिर है, वो है चंद्रमौड़ेश्वर टेम्पल। तो उडुपा, उडुपा का अर्थ क्या है, पा का अर्थ पति, उडु का अर्थ नक्षत्र, नक्षत्र का पति कौन है, चंद्रमा। तो वो चंद्रमा का स्थान है, यानी जिस जगह चंद्रमा के शिवजी का शरण ग्रहण किया तो वो जगह का नाम पड़ा उडुपी, उडुपी क्षेत्र है। और उसके बाद शिव जी कौन है, किसकी आराधना करते हैं, संकर्षण की आराधना करते हैं। तो वही संकर्षण परशुराम रूप में आए, परशुराम जी उसी जगह तपस्या किए जिसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है, और उन्होंने एक शिवलिंग को स्थापना किया जिसका नाम है अंतेश्वरा। और परशुराम जी उस शिव जी का स्थापना किए और उसी जगह परशुराम जी अपनी लीलाओं को समाप्त किए। परशुराम जी अपना मूल रूप में आए अनंत के रूप में, और शिवलिंग के प्रवेश के अंदर प्रवेश करके अनंत के रूप में उस शिवलिंग में समाये हुए, उसका नाम अनंतेश्वरा, जिसकी प्रार्थना से मध्वाचार्य प्रकट हुए। ये उडुपी क्षेत्र है। एनी हो, अभी ये शिवजी जो है बालचंद्र, उनके चंद्र जिनका शरण लिया, चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय, चंद्र जो है उनके सर के ऊपर है, और गौरी नयनोत्सवाय, गौरी कौन है, गौरी जो है वो पार्वती जी है। गौरी को पार्वती को गौरी को कहा बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे इस जगत में, इस भौतिक जगत में उससे सुंदर कोई नहीं है, देयर इज नो मोर ब्यूटीफुल। लोग बोलते हैं ना मिस यूनिवर्स कंपटीशन होता है, वास्तविक मिस यूनिवर्स गौरी हमेशा बहुत सुंदर रहती है, लेकिन उनका आकर्षण किसके प्रति है, शिव जी के प्रति है। शिव जी परम विरक्त है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि गौरी इतना सुंदर है, लेकिन ये दक्ष ने सब लोग का, सारे देवताओं का यही प्रश्न है, उनको कोई और नहीं मिला क्या क्योंकि गौरी अति सुंदर होने के नाते अति बुद्धिमान है। किन्ने सोचा अगर मैं विवाह करूंगी पार्वती जी, विवाह करूंगी केवल शिव जी से करूंगी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण भक्ति है, उनके अंदर वैराग्य है। तो जिसके अंदर वैराग्य है, जिसके अंदर कृष्ण भक्ति है, उसी विवाह करूंगी, ये गौरी का बुद्धिमता है। इसलिए स्त्रियों को, जो अविवाहित स्त्रियां हैं, उनको शिवजी से प्रार्थना करना चाहिए, अगर पति मिले तो ऐसा मिले जिसके अंदर भक्ति हो, इसलिए लोग प्रार्थना करते। लेकिन लोग क्या प्रार्थना करते, मुझे ऐसा पति मिले जो बहुत कमाता हो, ऐसा। शिवजी बोलते अरे पार्वती जो ऐसा नहीं किया था, पार्वती ने ऐसा प्रार्थना किया था, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो बहुत लाखों कमाता हो, ऐसा पति चाहिए। तो आजकल जो स्त्रियां शिवजी के पास जाके प्रार्थना, उन्हें अच्छा पति चाहिए, वो अच्छा शब्द का परिभाषा नहीं मालूम उनको, उनमें कोई दोष नहीं है। कोई अविवाहित स्त्रियां जाके प्रार्थना करे किसी से, शिवजी से, कि मुझे अच्छा पति मिले, उसमें कोई दोष नहीं है, वो करना चाहिए उनको। लेकिन अच्छा क्या है वो मालूम होना चाहिए, वो किसे सीखना चाहिए, कात्यायनी पार्वती से सीखना चाहिए। पार्वती ने आदर्श दिखाया कि पति का अर्थ है रक्षा। कौन रक्षा कर सकता है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्रदान करके हमारे रक्षा कर सकता है, वही वास्तविक पति है। तो आगे जाते हुए सुतप्त चामीकर चंद्र नीला, सुतप्त चामीकर चंद्र नीला, उनका वस्त्र का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, शिव जी को, जिन्होंने जो सुवर्ण वर्ण का, जो रंग का, जो पिता वस्त्र धारण किए हैं, और चंद्रमा का रंग का कभी वस्त्र धारण करते हैं, नील कमल के वस्त्र कभी धारण करते हैं, अभी कभी नीला घनश्याम बादल के रंग का वस्त्र कभी धारण करते हैं, और क्या करते हैं वो, पद्म प्रवालांबुद कांति वस्त्रैहि स नृत्य रंगेष्ट वर प्रदाय, स नृत्य रंगेष्ट मतलब वर प्रदाय, हमेशा उन्नति करते रहते हैं, और क्या करते हैं, वर प्रदाय, जो इष्ट वरद को प्रदान करने वाले हैं। वास्तविक इष्ट क्या है हमारा, वो है कृष्ण, यही इष्ट है, इष्ट को कहते हैं इष्ट कृष्ण, वास्तविक इष्ट। वैसे इष्ट जो कृष्ण भक्ति का इष्ट लेके जाते हैं, वो वर प्रदान करने वाले हैं। जो शिवजी जो भौतिक वर देते हैं, वर नहीं माना जाता, वर का अर्थ ये है प्रसन्न होकर तो जिया जाता है, उसको वर कहा जाता है। लेकिन शिवजी जो भौतिक चीज को देते हैं, वो प्रसन्न होकर नहीं देते, मैं अभी चर्चा किया था, वो झंझट से छूटने के लिए जल्दी भागो अभी लेके जाओ, मुझे परेशान मत करो, वो फ्रस्ट्रेट होके देते हैं। लेकिन शिवजी प्रसन्न होकर क्या देते हैं, वो कृष्ण भक्ति देते हैं। तो कैवल्य नाथाय वृषभ ध्वजाय, कैवल्य नाथाय, कैवल्य नाथाय क्या अर्थ है, तो जो कैवल्य को प्राप्त करना चाहते उनके लिए भी नाथ हो आप। दूसरे शब्दों में जिन लोगों की ऐसी इच्छा होती है मैं मुक्ति प्राप्त करूं या ब्रह्म में लीन हो जाऊं, उनको ले भी शास्त्र दे देते हैं। और अंततः वो ऋषभ ध्वजाया, ऋषभ के ऊपर बैठते हैं जो नंदी है, वही बड़ा चमत्कारी चीज है नंदी, और उनके बहुत सारे लीलाएं हैं। वो नंदी को बहुत गुस्सा आ गया था, आपको मालूम है भागवत में इसका पूरा वर्णन है। नंदी साधारण चीज नहीं, नंदी आगे सुधांश सूर याग्नि विलोचनाय, विलोचनेना उनके जो आंख है वो कैसे हैं, वो सारे जगत की अज्ञान को दूर करने वाला है, क्योंकि उनके आंख जो है सूर्य और चंद्रमा के बराबर है, उनसे अग्नि प्रकट होता है और सारे जगत को शुभ प्रदान करने वाला है। तमो तमो विवे भिदे तमो भिदे ते जगत शिवाया, सारा जगत को ऑस्पिशियस शिवत्व प्रदान करने वाले हैं। कैसे? तमो विभेदे, तमस को नाश करने वाले हैं। सहस्र शुभ्राम सहस्र शशिम, क्या उसमें हिंदी में है ना, इंग्लिश में मैं पढ़ने का, सहस्र रश्मिम, रश्मिम ना, हाँ रश्मि, सहस्र रश्मि, सॉरी सहस्र रश्मि का अर्थ है हजारों हजारों सूर्य और चंद्रमा की जो रश्मि है उसका तेज को भी नाश करने वाले हैं। तो वैसे ये शिवजी का गुणगान स्वयं चैतन्य महाप्रभु इन अष्टकों में करते हैं। वैसे तो सारा अष्टक वहां पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन मैंने सोचा कि चार पांच श्लोकों को मैं लूं। तो ये अंततः शिव जी को अनेकों अनेकों लोग अनेक से पहचानते हैं, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव को शिव जी से क्या प्रार्थना करना चाहिए? ये प्रार्थना करना चाहिए कि जब अंतकाल में शरीर त्याग होके जब मैं भगवान के धाम में जाऊंगा उस समय फ्री एंट्री दे देना, मुझे ज्यादा चेकिंग मत करो, पहचान मत करो, क्योंकि वो हमारे लिए शुद्ध क्षेत्रपाल है। ऐसा कहा गया है ब्रह्म संहिता में, इसका वर्णन है कि जब जीव गोलोक में प्रवेश करता है उस समय गोलोक की 10 दिशाओं में शिवजी खड़े, 10 दिशाओं में शिवजी खड़े हैं, और वही व्यक्ति को एंट्री देते हैं जो एकदम योग्य है। तो इसलिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए, है कि नहीं? जब कहीं आप मेंबर से मिलने के लिए जाते हो सबसे पहले किसको बोलना पड़ता है? वॉचमैन कह रहे छोड़ो ना, बाद में मिल सकते हो, है कि नहीं? तो वैसे ही कृष्ण से मिलना है तो किसको? शिव जी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। इसलिए शरीर शिव जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? हम जब उनका ही स्वभाव को प्रकाशित करेंगे, स्वभाव है दया, कंपैशन, इज वेरी कंपैशन, वैसे ही हमको दया को प्रकाशित करना चाहिए। शिव जी की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न वगैरह है? जैसे टाइम ज्यादा हो गया। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? कोई एकदम निश्चित कहीं मिला नहीं, लेकिन उसके पीछे चार कारण हैं। ऐसे कोई शास्त्रिक चीज मुझे प्राप्त नहीं हुआ, कोई श्लोक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं शिव पार्वती का विवाह का दिन है, लेकिन उसको कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जिस दिन शिव जी ने विष पिया था उस दिन पार्वती उस रात को शिव जी के लिए प्रार्थना किया था। तीसरा कारण है शिव जी ने एक बार बहुत क्रोध में प्रलय कर दिया था, लेकिन प्रलय का समय नहीं था, तो पार्वती ने बहुत प्रार्थना की शिव जी से, सारे जीवों के प्रति दया, हे शिव जी आप दया दिखाने वाले हो, आप ऐसा क्यों किया, सबको नाश कर रहे हो। तब शिव जी ने सोचा जैसे मैंने गलत कर दिया, वापस उनने सृष्टि कर दिया। ऐसा तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि एक शिकारी था, बड़ा शिव भक्त था, और उस दिन उन्होंने उपवास किया था और शिव जी की प्रार्थना किया था, ऐसा कोई स्टोरी आता है शिव पुराण में। तो उसकी वजह से शिवरात्रि मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति जो है शिकारी जो है शिवरात्रि के दिन ही कार्य किया था, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए ये कार्य की वजह से वो शिवरात्रि प्रसिद्ध हो गया कि राजा जो है वो बना, बाद में जाकर काशी का राजा बना और उन्होंने काशी विश्वनाथ का उन्होंने सेवा किया। विश्वनाथ जी प्रकट होके उन्होंने कहा कि जिस रात्रि में तुमने उपवास किया था मेरा पूजा किया था उसी को शिवरात्रि मनाया जाएगा। कोई निश्चित कहीं भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ लेकिन शिव जी का दिवस है। लेकिन ये सोचना आज के दिन में भांग बना के पीऊंगा, रात भर भांग बनाते हैं, रात भर रुद्री चलता है और सुबह भांग पीना, ये शिव जी भी सोचते क्या हो क्या गया। मैं तमोगुण का नियंता हूं, मैं तमोगुण में नहीं हूं, ध्यान रखना चाहिए। शिव जी तमोगुण में नहीं है, तमोगुण के नियंता है। वो सोचते हैं शिव जी भी तमोगुण में है, हम भी उनके अनुगम ही है, हम भी तमोगुण में जाएंगे। शिव जी कभी भी तमोगुण में नहीं जाते, वो तमोगुण में नहीं है इसलिए तमोगुण का नियंता है। और तमोगुण को नियंत्रण करना साधारण चीज नहीं है, उसके लिए आपको इतना सत्वगुण में होना चाहिए तभी आप तमोगुण को नियंत्रण कर सकते हो। शिवजी जो है वो कभी भांग नहीं पीते, अगर ठीक है अगर वो पिए समझ लीजिए तो आपको पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शिवजी शिव प्रसाद, शिवजी का प्रसाद, शिव प्रकाश प्रसाद क्या है भांग, दुर्गा प्रसाद क्या है मांस। हाँ एक दो दुकान है, मैं कलकत्ता में देखा, एक जगह लिखा है दुर्गा प्रसाद, एक जगह है शिव प्रसाद, वो एक ही मालिक है उसका, एक जगह दारू बेचता है दूसरा जगह मांस बेचता है। ये इतना तो वैष्णव के द्वारा ही हम शिव तत्व को सुनना चाहिए। शिव जी का उपासना केवल वैष्णव चरित्र के अनुसार होता है, ठीक है। अगर वो क्षेत्र में है तो खा सकते हैं, वैसे किसी ने शिव मंदिर बना दिया उधर कुछ चढ़ा दिया दे दिया वो शिवजी नहीं उधर कोई भूत है, क्योंकि शिवजी ऐसे लोगों से सेवा स्वीकार नहीं करते। कोई क्षेत्र है, शिव क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जैसे भुवनेश्वर जाएंगे शिव प्रसाद नहीं लेंगे, नहीं अपराध हो जाएगा। चोयन सिंचन ने महाप्रभु प्रसाद ग्रहण किया है तो हम रोड में कोई शिव इधर किधर रास्ते में जाइए एक शिवलिंग है इधर, कल 10 लोग खड़े होते थे सोच रहे थे हम क्या करें कल शिवरात्रि है, रोज कोई उसको पूछता नहीं है, वो धुआं खा रहे हैं रोड जा रहे हैं सब कुछ जा रहा है, तो कल शिवरात्रि है। एक पंडित जी बैठे थे, मैंने कहा आप चिंता मत करो मैं हूं ना इधर बैठूंगा पूरा मैं पैसा कमाऊंगा। तो रोज उसको कोई चिंता नहीं करता उसका, शिवरात्रि है पैसा मिलेगा बैठेंगे। तो ऐसे जो शिव प्रसाद है उसको शिव प्रसाद ही माना जाता है। जहां जिस जगह आचार्य का संबंध है भले ही वो दुर्गा के मंदिर क्यों ना हो उसके साथ हमारा संबंध है। पुराणों में कोई क्षेत्र है, क्षेत्र का वर्णन है, दुर्गा क्षेत्र है या शिव क्षेत्र है, अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे काशी शिव क्षेत्र है, चैतन्य महाप्रभु गए काशी में, हाँ उधर भी नृत्य किए, बनारस में विश्वनाथ के स्थान नृत्य किए, और दक्षिण भारत में जब गए अनेकों शिव मंदिर है, सो मेनी शिव टेम्पल, हर शिव मंदिर में गए क्षेत्र, क्योंकि सब क्षेत्र है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। किसी ने कहा प्रभु जी हमने शिव जी का मंदिर खोला आप आइए उससे प्रसाद ग्रहण करें, तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। हाँ क्षेत्र, जैसे कोई श्री कालहस्ती से आया हो शिव जी का प्रसाद है तो आपको लेना चाहिए, लेकिन उधर कोई भांग नहीं चलाता। ये भांग का सिस्टम नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, वो तो पता नहीं कहां से ये शुरू हो गया, शिव जी भांग पीते हम भी भांग पियेंगे चलो महाप्रसाद है, ये ऐसा नहीं होता है। और शिव जी के मंदिर में कोई लहसुन प्याज भी नहीं लगाता, जो चार जात क्षेत्र है। भुवनेश्वर में जाके देखिए उधर कौन भांग लगाता है शिव जी को, नहीं लगाता है, नहीं उधर जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है, वहां महाप्रसाद माना जाता है, और उसके बाजू में ही मंदिर क्या है अनंतेश्वर मंदिर है, अनंत पद्मनाभ मंदिर है कि नहीं, उनको भोग लगता है, उनका महाप्रसाद जो है वो भुवनेश्वर मंदिर लिंगराज मंदिर में जाता है। तो ये ठीक है। संतरा श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।